नमस्कार और एकत्र ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विचारक की दुनिया में जा रहे हैं जिन्होंने सच कहूं तो अर्थव्यवस्था को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया, जॉन मेनार्ड कीन्स।
जी हाँ, एक बहुत ही प्रभावशाली ब्रिटिश अर्थशास्त्री, विचारक और भी बहुत कुछ थे वो। 1883 से 1946 तक का उनका जीवन काल रहा।
तो आज हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि कीन्स इतने जरूरी क्यों है, मतलब कैसे उनके आइडियाज ने सरकारों को आर्थिक संकटों से, खासकर बेरोजगारी से निपटने के तरीके बदल दिए।
बिल्कुल, और ये भी कि क्या उनके विचार, जो देखिए लगभग 100 साल पुराने हो गए, आज भी हमारी इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में फिट बैठते हैं।
हाँ, ये बड़ा सवाल है। चलिए इसी की तह में चलते हैं।
जरूर। तो कीन्स की कहानी, जैसा आपने कहा, 1883 में शुरू होती है। विक्टोरियन इंग्लैंड का वो दौर था। जरा सोचिए कैसा माहौल होगा। ब्रिटिश साम्राज्य अपने चरम पर, पाउंड स्टर्लिंग सबसे मजबूत।
हाँ, और वो गोल्ड स्टैंडर्ड, मतलब सोने पर आधारित मुद्रा, उस पर अटूट विश्वास था कि यही सिस्टम सबसे अच्छा है।
बिल्कुल, लगता था जैसे ये हमेशा चलेगा, लेकिन सतह के नीचे ना बदलाव की आहट थी।
अच्छा।
जैसे कि
उसी साल 1883 में कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुई थी। नीत्शे के विचार भी जोर पकड़ रहे थे, तो जो पुरानी क्लासिकल इकोनॉमिक्स थी ना, एडम स्मिथ वाली, कि भाई बाजार सब अपने आप संभाल लेगा, उस पर सवाल उठने लगे थे।
हाँ, उस पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। और ये सिर्फ इकोनॉमिक्स में नहीं था, कल्चर में भी देखिए मॉडर्निज्म आ रहा था।
आइंस्टीन, फ्रॉयड, पिकासो सब अपनी अपनी फील्ड में क्रांति ला रहे थे।
सही कहा। और कीन्स खुद वो ब्लूम्सबरी ग्रुप का हिस्सा थे, वर्जीनिया वुल्फ, लिटन स्ट्रैची जैसे लोग। ये ग्रुप क्या था, ये पुरानी विक्टोरियन सोच, नैतिकता, परंपराएं, उन सब पर सवाल उठा रहा था।
दिलचस्प है। और फिर आया पहला विश्व युद्ध, उसने तो जैसे सब कुछ उलट पुलट कर दिया।
हाँ, 1914 से 18 तक उसने पुरानी व्यवस्था को तोड़ा और उसके बाद भयानक आर्थिक उथल पुथल मची। इसी माहौल ने, इसी अराजकता ने कीन्स जैसे लोगों को नए ढंग से सोचने पर मजबूर किया।
तो ये वो बैकग्राउंड था जिसमें कीन्स के विचार पनप रहे थे।
जी, और वो अकेले नहीं थे। उस समय अर्विंग फिशर थे, जोसेफ शुम्पीटर, और हाँ, फ्रेडरिक हायेक भी थे। ये सब बड़े नाम थे जो इन्हीं चुनौतियों से जूझ रहे थे। बड़ा ही, मतलब, तूफानी लेकिन बहुत फर्टाइल टाइम था ये इकोनॉमिक थॉट के लिए।
तो इस माहौल में जन्मे कीन्स का अपना सफर कैसे शुरू हुआ, परिवार का कितना असर रहा होगा? सुना है काफी बौद्धिक परिवार था।
हाँ बिल्कुल, कैम्ब्रिज में ही जन्म हुआ। पिता जॉन नेविल कीन्स, वो खुद एक जाने माने अर्थशास्त्री और लॉजिशियन थे।
अच्छा।
और माँ फ्लोरेंस एडा कीन्स, वो सोशल रिफॉर्मर थी और बाद में कैम्ब्रिज की पहली महिला मेयर भी बनी। तो घर में ही वो माहौल था,
ज्ञान और सामाजिक सरोकार दोनों का।
बिल्कुल। फिर उनकी पढ़ाई भी बेहतरीन जगह हुई, ईटन कॉलेज और फिर किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। वहां वो अल्फ्रेड मार्शल के छात्र रहे।
अल्फ्रेड मार्शल उस समय के सबसे बड़े अर्थशास्त्री। लेकिन मजे की बात यह है कि बाद में कीन्स ने मार्शल के ही क्लासिकल विचारों को चैलेंज किया।
यही तो, कैम्ब्रिज में ही वो अपोस्टल्स नाम की एक सीक्रेट इंटेलेक्चुअल सोसाइटी के सदस्य भी बने। ये बहुत खास ग्रुप था जहां विचारों पर खुली बहस होती थी।
अच्छा।
यही उनके दोस्ती ब्लूम्सबरी ग्रुप वालों से गहरी हुई। तो ये दिखाता है कि कीन सिर्फ, यू नो, नंबर क्रंचिंग वाले इकोनॉमिस्ट नहीं थे। उनकी सोच का दायरा बहुत बड़ा था। आर्ट, लिटरेचर, फिलोसफी सब उसमें शामिल था।
तो यहीं से वो बड़े आइडियाज आने शुरू हुए जिन्होंने अर्थशास्त्र को हिला दिया। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती उन्होंने किस चीज को दी?
सबसे बड़ा हमला कह सकते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स की उस बेसिक सोच पर था कि अर्थव्यवस्थाएं अपने आप हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पर वापस आ जाती हैं।
हाँ।
कि अगर बेरोजगारी है तो तनख्वाहें कम होंगी, फिर कंपनियां ज्यादा लोगों को रखेंगी और सब ठीक हो जाएगा।
एग्जैक्टली।
कीन्स ने कहा, नहीं, जरूरी नहीं है ऐसा हो। इकोनॉमी लंबे समय तक, मतलब बहुत लंबे समय तक, हाई अनएम्प्लॉयमेंट और कम प्रोडक्शन के गड्ढे में फंसी रह सकती है।
ये तो उस वक्त के लिए बहुत रैडिकल बात रही होगी। मतलब जैसे कोई कहे कि शरीर हमेशा खुद ठीक नहीं होता, उसे दवाई चाहिए।
बिल्कुल। तो फिर उन्होंने इलाज भी सुझाया। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, एग्रीगेट डिमांड, यानी समग्र मांग।
समग्र मांग, आसान शब्दों में ये क्या है?
बहुत सिंपल है। किसी भी इकोनॉमी में कितना सामान बनेगा, कितने लोगों को नौकरी मिलेगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कुल मिलाकर कितनी डिमांड है। लोग, कंपनियां, सरकार सब मिलकर कितना खर्च करने को तैयार है।
अच्छा।
अगर ये टोटल डिमांड कम है तो प्रोडक्शन कम होगा, नौकरियां जाएंगी, सीधी सी बात।
सुनने में तो ये लॉजिकल लगता है, ज्यादा डिमांड, ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा रोजगार।
लॉजिकल है, लेकिन इसके इम्प्लिकेशंस बहुत बड़े थे। इसी बेस पर कीन्स ने कहा कि जब इकोनॉमी मंदी में हो, जब प्राइवेट सेक्टर मतलब लोग और कंपनियां डर के मारे खर्च ना कर रहे हो, तो हाथ पर हाथ धरे मत बैठो, सरकार को आगे आना होगा।
सरकार को कैसे?
सरकार अमर खर्च बढ़ाए, सड़कें बनाए, पुल बनाए, कुछ भी करे जिससे पैसा सिस्टम में आए, इसे कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। या फिर सेंट्रल बैंक ब्याज दरें कम करे ताकि लोग और कंपनियां सस्ता कर्ज लेकर खर्च करें। ये हुई मॉनेटरी पॉलिसी।
मतलब सरकार एक तरह से इकोनॉमी को पुश स्टार्ट दे।
बिल्कुल, धक्का देकर स्टार्ट करे।
लेकिन यहाँ एक सवाल हमेशा उठता है, सरकारी दखल के अपने रिस्क भी तो होते हैं, कर्ज बढ़ जाना, महंगाई।
हाँ हाँ बिल्कुल, ये डिबेट तब भी थी, आज भी है। कीन्स खुद भी इन खतरों को समझते थे, उनका आइडिया बैलेंस का था। मंदी में खर्च करो, इकोनॉमी ठीक हो जाए तो खर्च कम कर दो।
पर क्या सरकार ऐसा कर पाती है? खर्च कम करना मुश्किल होता है ना?
यही तो दिक्कत है, और इसी पर उनकी फ्रेडरिक हायक से जबरदस्त बहस थी। हायक कहते थे कि सरकारी दखल से ही प्रॉब्लम होती है, बाजार को अकेला छोड़ दो। ये बहस आज तक चल रही है।
एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया था उनका, एनिमल स्पिरिट्स। ये क्या चीज है? जानवरों का क्या लेना देना?
नहीं, जानवर नहीं, इंसान के जज्बात। कीन्स का कहना था कि इकोनॉमी में खासकर इन्वेस्टमेंट के जो बड़े फैसले होते हैं वो सिर्फ लॉजिक, कैलकुलेशन, नफे नुकसान देखकर नहीं लिए जाते।
तो फिर
उसमें इंसान की उम्मीदें, उसका डर, उसका भरोसा, कभी कभी तो बस एक गट फीलिंग, इन सब का बहुत बड़ा रोल होता है। यही है एनिमल स्पिरिट्स।
अच्छा,
यही वो चीज है जो बाजार में अचानक तेजी या एकदम से मंदी ला सकती है। हम स्टॉक मार्केट में रोज देखते हैं इसे।
हाँ, ये तो रोज का अनुभव है।
और मजे की बात, कीन्स खुद स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर थे, कभी खूब कमाया कभी गवाया भी, तो उन्हें इन स्पिरिट्स का प्रैक्टिकल अनुभव था।
मतलब इकोनॉमिक्स सिर्फ मैथ नहीं है, साइकोलॉजी भी है, और इसी से जुड़ा वो लिक्विडिटी प्रेफरेंस वाला आइडिया था, नकदी रखने की चाहत।
हाँ, ये भी ह्यूमन बिहेवियर से जुड़ा है। कीन्स ने पूछा कि लोग अक्सर अपना पैसा कैश में या बैंक में क्यों रखना चाहते हैं, जबकि कहीं और इन्वेस्ट करने से शायद ज्यादा रिटर्न मिले।
क्यों?
अनिश्चितता का डर, फ्यूचर का पता नहीं, तो लोग सेफ्टी चाहते हैं, चाहते हैं कि जरूरत पड़े तो पैसा तुरंत हाथ में हो। इसी को कहते हैं लिक्विडिटी, यानी नकदी को प्रेफरेंस देना। उनकी एक शुरुआती किताब थी अ ट्रीटस ऑन प्रोबेबिलिटी, उसमें भी उन्होंने अनसर्टेनिटी और बिलीफ जैसे मुद्दों पर लिखा था, वो सब बाद में उनके इकोनॉमिक थॉट में आया।
तो कुल मिलाकर कीन्स इकोनॉमिक्स को ज्यादा ह्यूमेन बना रहे थे, कह रहे थे कि ये सिर्फ नंबर गेम नहीं है, इसमें इंसान, उसकी भावनाएं और हाँ सामाजिक न्याय भी मायने रखता है। शायद इसीलिए उन्होंने इसे मॉरल साइंस कहा।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उनके लिए इकोनॉमिक पॉलिसी का मकसद सिर्फ जीडीपी बढ़ाना नहीं था, एक बेहतर, ज्यादा जस्ट समाज बनाना भी था, और ये सोच उनके काम में साफ दिखती है।
तो चलिए उनके कुछ खास कामों पर नजर डालते हैं। कौन सी किताबें थीं जिन्होंने सबसे ज्यादा असर डाला?
शुरुआत तो हुई थी इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस 1913 से। इससे वो इंडियन मॉनेटरी सिस्टम के एक्सपर्ट माने जाने लगे। लेकिन असली धमाका हुआ 1919 में द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पीस से।
हाँ, ये किताब तो बहुत फेमस हुई। इसमें उन्होंने वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो वर्साई की संधि हुई थी उसकी धज्जियां उड़ा दी थी, खासकर जर्मनी पर जो भारी हर्जाना लगाया गया था।
बिल्कुल, उन्होंने साफ साफ भविष्यवाणी कर दी थी कि ये शर्तें जर्मनी को बर्बाद कर देंगी, यूरोप में नफरत और अस्थिरता पैदा करेंगी और आगे चलकर एक और युद्ध का बीज बोएंगी।
और उनकी बात सच साबित हुई।
हाँ, और ये किताब सिर्फ इकोनॉमिक एनालिसिस नहीं थी, इसमें गजब की पॉलिटिकल फोरसाइट थी और लिखने का स्टाइल भी जबरदस्त था। उन्होंने वुड्रो विल्सन, लॉयड जॉर्ज जैसे नेताओं के ऐसे विविड पोर्ट्रेट खींचे कि क्या कहने।
इसी किताब से जुड़ा उनका वो फेमस कोट भी है ना, लंबे समय में तो हम सब मर चुके होते हैं।
हाँ, किसी ने कहा होगा कि लॉन्ग रन में सब ठीक हो जाएगा, तो कीन्स का जवाब था इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। मतलब हमें आज की समस्याओं का हल आज निकालना है, कल पर नहीं टालना।
क्या बात है, एकदम प्रैक्टिकल। इसके बाद?
इसके बाद उन्होंने मॉनेटरी थ्योरी पर फोकस किया। अ ट्रीटस ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म 1923, अ ट्रीटस ऑन मनी 1930 जैसी किताबें लिखी।
यहीं पर उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड को बर्बर अवशेष कहा।
बर्बर अवशेष, गोल्ड स्टैंडर्ड तो स्टेबिलिटी की निशानी माना जाता था।
कीन्स मानते थे कि ये सरकारों के हाथ बांध देता है। मंदी में इकोनॉमी को संभालने के लिए कभी नोट छापने पड़ते हैं, कभी ब्याज दरें बदलनी पड़ती हैं, लेकिन अगर आपकी करेंसी सोने से बंधी है तो आप ये आसानी से नहीं कर सकते। फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है।
समझ गया। और फिर आई उनकी मैग्नम ओपस, उनकी सबसे बड़ी किताब द जनरल थ्योरी।
हाँ, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, 1936। सोचिए, ये किताब ग्रेट डिप्रेशन के बिल्कुल बीच में आई। दुनिया भर में बेरोजगारी चरम पर थी, पुरानी नीतियां फेल हो चुकी थीं।
सही समय पर आई मतलब?
बिल्कुल, इसी किताब ने क्लासिकल इकोनॉमिक्स को फाइनल झटका दिया और सरकारी हस्तक्षेप के सिद्धांत की मजबूत नींव रखी। इसकी लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल है, मानते हैं, पर इसका असर दशकों तक रहा। और शायद इसीलिए उन्होंने कहा था कि कठिनाई नए विचारों को अपनाने में उतनी नहीं जितनी पुराने विचारों से पीछा छुड़ाने में है।
ये बात तो 100% सच है। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान भी उनके विचार काम आए।
हाँ, जरूर। उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा, हाउ टू पे फॉर द वॉर, 1940। इसमें उन्होंने युद्ध के समय महंगाई रोकने के लिए अनिवार्य बचत यानी कंपल्सरी सेविंग का एक बड़ा प्रैक्टिकल सुझाव दिया। दिखाता है कि वो सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी सोचते थे।
अच्छा, अब जरा उनकी तुलना उनके कंटेम्पररी से करते हैं, खासकर फ्रेडरिक हायक, जिनसे उनकी इतनी बड़ी बहस थी।
कीन्स वर्सेस हायक, ये तो 20वीं सदी की सबसे बड़ी इंटेलेक्चुअल लड़ाइयों में से एक है।
हाँ।
कीन्स मानते थे कि कैपिटलिज्म में अंदरूनी अस्थिरता है, उसे संभालने के लिए सरकार का रोल जरूरी है।
हाँ।
हायक मानते थे कि सरकारी दखल ही प्रॉब्लम है, फ्री मार्केट को अकेला छोड़ो, वो सब ठीक कर लेगा।
और ये बहस तो आज भी जिंदा है, सरकार का रोल कितना हो?
बिल्कुल, कितना रेगुलेशन, कितनी फ्रीडम, ये सवाल आज भी उतना ही रेलेवेंट है। एक डॉक्यूमेंट्री है PBS की, द कमांडिंग हाइट्स, उसमें इस पूरी आइडियोलॉजिकल लड़ाई को बहुत अच्छे से दिखाया है।
देखनी पड़ेगी। अच्छा, और उनके ब्लूम्सबरी ग्रुप वाले दोस्तों का क्या असर रहा? आर्ट और लिटरेचर की दुनिया ने उनके इकोनॉमिक विचारों को कैसे शेप किया?
देखिए, सीधा सीधा कनेक्शन बताना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, ब्लूम्सबरी ग्रुप का जो माहौल था, पुरानी सोच पर सवाल उठाना, ह्यूमन इमोशंस को, साइकोलॉजी को अहमियत देना, वो झलक कीन्स के काम में दिखती है।
जैसे वो एनिमल स्पिरिट्स वाली बात।
हाँ, और इकोनॉमिक्स को मॉरल साइंस मानना, ये सब दिखाता है कि वो कितने मल्टी डायमेंशनल थिंकर थे। वो सिर्फ इकोनॉमिस्ट में नहीं थे, आर्ट के संरक्षक थे, कैम्ब्रिज आर्ट्स थिएटर के फाउंडर्स में थे।
कमाल है। तो उनकी लेगेसी क्या रही? उनके जाने के बाद उनके विचारों का क्या हुआ?
अरे, जबरदस्त लेगेसी रही। वर्ल्ड वॉर टू के बाद आप मानिए करीब 30 साल तक वेस्टर्न वर्ल्ड में कीन्ज़ियन इकोनॉमिक्स का ही बोलबाला था। इसे कीन्ज़ियन कंसेंसस कहते हैं।
कीन्ज़ियन कंसेंसस?
हाँ, सरकारों ने फुल एम्प्लॉयमेंट और वेलफेयर स्टेट को अपना गोल बनाया। यहाँ तक कि अमेरिका के रिपब्लिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने भी कह दिया था, वी आर ऑल कीन्ज़ियंस नाउ।
सोचिए। लेकिन फिर 70 के दशक में कहानी बदली, वो स्टैगफ्लेशन वाली प्रॉब्लम आई।
हाँ, 70s में वो अजीब सिचुएशन बनी, इन्फ्लेशन भी हाई, अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई। कीन्ज़ियन मॉडल इसे ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर मिल्टन फ्रीडमैन और हायक जैसे न्यू लिबरल थिंकर्स को स्पेस मिला। उन्होंने कहा, देखो, सरकारी दखल कम करो, मार्केट को फ्री करो। थैचर, रीगन जैसे नेताओं ने यही नीतियां अपनाई। लगा कि कीन्स का जमाना गया।
पर क्या वो सच में गया? 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, उसके बाद तो फिर से कीन्स का नाम गूंजने लगा।
बिल्कुल सही। 2008 ने दिखा दिया कि मार्केट हमेशा खुद को ठीक नहीं कर सकता, बड़े क्राइसिस में सरकार को ही आना पड़ता है। दुनिया भर की सरकारों ने खरबों डॉलर झोंक दिए इकोनॉमी बचाने के लिए। ये तो प्योर कीन्ज़ियन रेमेडी थी।
हाँ, ये तो है।
आज भी पॉल क्रूगमैन, जोसेफ स्टिग्लिट्ज जैसे बड़े इकोनॉमिस्ट कीन्स इंस्पायर्ड हैं। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी का रोल, मार्केट साइकोलॉजी, इन सब पर कीन्स के आइडियाज आज शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं।
उनके कुछ और कोट्स जो उनके विचारों या पर्सनैलिटी को दर्शाते हों?
एक तो वो बहुत फेमस है, अर्थशास्त्रियों और राजनीतिक दार्शनिकों के विचार आमतौर पर समझे जाने की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। व्यवहारिक लोग आमतौर पर किसी दिवंगत अर्थशास्त्री के गुलाम होते हैं।
मतलब आइडियाज की ताकत
बहुत गहरी बात है। और
उनकी प्रैक्टिकल सोच दिखती है इसमें। स्पष्ट रूप से गलत होने की अपेक्षा मोटे तौर पर सही होना बेहतर है।
मतलब परफेक्शन के पीछे मत भागो, प्रैक्टिकल रहो।
हाँ।
और आइडियाज को हिम्मत से रखने पर कहते थे, शब्दों को थोड़ा बेलगाम होना चाहिए क्योंकि वे विचारहीनों पर विचारों के हमले हैं।
वाह, अच्छा उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। वो रशियन बैलेट डांसर वाली बात सही है?
हाँ बिल्कुल, ये भी उनके मल्टी फैसेटेड व्यक्तित्व का हिस्सा है। उन्होंने फेमस रशियन बैलेरीना थी लीडिया लोपोकोवा उनसे शादी की। उनके ब्लूम्सबरी वाले दोस्त बड़े हैरान हुए थे, पर शादी कामयाब रही। आर्ट लवर टू थे ही वो।
और उन्हें बैरन कीन्स का टाइटल भी मिला था।
जी हाँ, 1942 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनाया गया। अपने इंटेलेक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए ये सम्मान पाने वाले वो पहले इकोनॉमिस्ट थे।
अच्छा,
और हाँ, वर्ल्ड वॉर टू के आखिर में जो ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी ना 1944 में, जहाँ से वर्ल्ड बैंक और IMF बने,
हाँ हाँ,
उसमें कीन्स ने ब्रिटिश डेलीगेशन को लीड किया था और बहुत ही सेंट्रल रोल निभाया था। हालांकि उनका एक ग्लोबल करेंसी बैंकोर बनाने का बड़ा एम्बिशियस प्लान था, वो अमेरिका के विरोध के कारण पूरी तरह लागू नहीं हो पाया।
तो कुल मिला के देखें, कीन्स सिर्फ एक अर्थशास्त्री नहीं थे, वो एक कॉम्प्लेक्स, बेहद प्रभावशाली और दूर की सोचने वाले इंसान थे। उन्होंने इकोनॉमिक्स को, कह सकते हैं, एक मानवीय चेहरा दिया।
बिल्कुल, उसमें अनिश्चितता, भावनाओं, उम्मीदों, डर, इन सब की भूमिका को पहचाना।
उन्होंने हमें सिखाया कि अर्थव्यवस्था कोई मशीन नहीं है, ये इंसानों से चलती है, और इसे समझने और संभालने के लिए सिर्फ फॉर्मूलों से ज्यादा कुछ चाहिए।
सही कहा।
आज जब हम इतने सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज है, तो शायद हमें कीन्स की तरह सोचने की जरूरत है। जरूरत है कि जो पुरानी जड़ हो चुकी धारणाएं हैं उन पर हिम्मत से सवाल उठाएं और नए, ज्यादा मानवीय समाधानों की तलाश करें। क्या हम आज ये करने को तैयार हैं? ये एक सवाल है जिसके साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।